धारी जी एवं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरण कमल में प्रणाम करके आज मैं भगवान नृसिंह देव के आविर्भाव के प्रसंग का कुछ आस्वादन करने की चेष्टा करूंगा। आप समस्त भक्तों के बीच में ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है, इसे नृसिंह चतुर्दशी भी कहते हैं। तो आज के दिन भगवान नृसिंह देव इस जगत में आविर्भूत हुए थे और एक बहुत बड़ी आश्रय शक्ति का विनाश भगवान ने किया और अपने भक्त की रक्षा की। बहुत ही मंगलमय दिन है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन भगवान इस प्राकृत जगत में प्रकट होते हैं और विशेष करके इस पृथ्वी पर, तो वह दिन इस पृथ्वी के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए बड़ा शुभ दिन होता है। जैसे घर का स्वामी मालिक, मान लीजिए कहीं बिजनेस कर रहा है, दुकान या सर्विस कर रहा है, और वह अपने घर जब लौटता है तो स्वामी का घर में लौटना पत्नी के लिए, बच्चों के लिए बड़ा मंगलमय दिन होता है। बच्चे अपेक्षा करते हैं कि हमारे पिताजी हमारे लिए यह वस्तु लाएंगे, पत्नी भी अपेक्षा करती है कि हमारे पतिदेव हमारे लिए यह लाएंगे, हमारा सुख दुख पूछेंगे। बहुत काल के विरह के बाद पत्नी को जैसे अपने पति के संग मिल करके और उनकी प्रेममय बातें सुन करके, उनका उपहार पा करके जैसे आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही वह पृथ्वी धन्य हो जाती है जब भगवान आते हैं इसका दुख मिटाने के लिए। अन्यथा और लोग तो केवल पृथ्वी का दुख बढ़ाते हैं। आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि भगवान श्रीकृष्ण इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लेते हैं, क्योंकि अधिक कारण है भू भारा अवतारणाय, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो आज का यह चतुर्दशी का दिन सबके लिए मंगलमय है। तो इस दिन भगवान क्यों आविर्भूत हुए और किस तरह प्रकट हुए, यह लीला में श्रीमद् भागवतम से कह रहा हूं। निकट चल रहा हूं और प्रयास करूंगा कि आप डायरेक्ट संस्कृत समझते हुए चलें। कुछ अभ्यास मिले कि सुखदेव गोस्वामी किस तरह बोलते थे और परीक्षित महाराज कैसे सुने थे भगवान नृसिंह देव के विषय में। तो सुप्रसिद्ध घटना है कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद महाराज थे, वो आज भी हैं। जब वो 5 वर्ष के बच्चा थे तो उनको गुरुकुल में भेजा गया, असुर गुरुकुल में। पढ़ करके और लगभग 9 महीने के बाद लौटे तो पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा, तुम अपने टीचरों से, गुरुजनों से जो कुछ सीखे हो उसमें से तुमको क्या अच्छा लगा। प्रत्येक पिता जानना चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उसे कौन सी बात अच्छी लगती है। तो हिरण्यकश्यपु वास्तव में यह सुनना चाहता था कि उसका बेटा ये बोलेगा कि अपराधियों को पकड़ना, दंड देना और शासन करना, राजा बनना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। वो यही सुनना चाहता था। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताजी, हमारे समय से तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है ये घर गृहस्थी जो है अंधकूप है, इसमें पड़ा हुआ जीव बहुत दुख भोग रहा है, इसे छोड़कर वृंदावन चला गए व्यक्ति और भगवान कृष्ण का आश्रय ले, यह मुझे अच्छा लगता है। अब हिरण्यकश्यप के लिए ये बात बिल्कुल अनुचित थी, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने बच्चे पर क्रोधित नहीं हुआ, उसका क्रोध हुआ गुरुओं पर। उसने सोचा कि ये गुरु लोग उन्हें ले जाकर के कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, गुरुपुत्रों पर जो शुक्राचार्य के पुत्र थे उन पर वो बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि तुम लोग ठीक से बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो क्या, संगत विधार जपान वाले गुरु जो है बुझाते हैं, गुरु जो है स्कूल में बच्चे को सम्यक पढ़ाओ, जैसा सिलेबस बनाया गया है उसके अनुसार पढ़ाओ। ये क्या बोल रहे हैं, सुनो तुम लोग, गुरुपुत्रों से बोल रहे हैं, यही लोग पढ़ा रहे थे। शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप के गुरु थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे, संघ और अमरक दोनों का नाम था। तो उसने कहा कि आप लोग ठीक से पढ़ाओ, हमें लगता है कि कोई न कोई वयस्य हमारे स्कूल में आ रहा है, नहीं तो ये बात कहां से। नहीं, पहले गुरुपुत्रों ने कहा सरकार हम नहीं पढ़ाए हैं इसको, ये अपने आप ऐसी इसकी बुद्धि है। हमने कस्तु कहा ना, अपने आप ऐसी बुद्धि हो नहीं सकती, ये वयस्यों लोग खास करके इस काम वाले बहुत ठीक जानते हैं, तो वो जानते नहीं है, वो कर्मी के वेश में प्रचार करते हैं। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप बोला, छद निर्देश में ये वयस्यों लोग प्रचार करते हैं, कोई न कोई जरूर स्कूल प्रोग्राम किया होगा, नहीं तो ये बच्चा कैसे जान गया, उसको पता नहीं था कि गर्व नहीं सीख लिया है। वास्तव में उसके स्कूल में कोई वयस्य नहीं गया था, लेकिन हिरण्यकश्यप को इस बात की शंका हुई, ले जाओ सम्यक रूप से सिखाओ, नहीं तो ऋषियों के दास वैष्णव लोग आया करते हैं स्कूल में। ठीक है, वो लोग ले जाए, ले जाकर प्रहलाद महाराज से पूछे, लोग तो डर गए कि बाप रे बाप, आज नौकरी बच गई, राजा बहुत क्रोधित नहीं हुआ। चलो तो फुसला फुसला करके उस बच्चे से पूछने लगे, प्रहलाद वत्स भद्रम के सत्यम कथय मानसा, बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार, तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा, सत्यम कथय मानसा, तुम सत्य सत्य बोलो, झूठ मत बोलना। अन्य बच्चों से तुम्हारी ये जो भीम बुद्धि हुई है ये किस कारण से हुई, कौन किया है, केवल नाम बता दो कौन आया था। उन लोगों को भी शंका हुई कि हो न हो कोई वैष्णव ग्रुप का आया था, कौन आया, किस दिन आया, केवल नाम बता दो, मैं धन जीवन में किस राजा के पास। वो उस वैष्णव को मिला करके चाहे फांसी पर चढ़ाए चाहे कुछ भी करे, बेटा हमारी नौकरी बच जाएगी, इसलिए बता दो। प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान चक्रपाणी हमारी बुद्धि को घुमा रहे हैं, वो लोग समझे नहीं, तो झूठ मत बोलो, चक्रपाणी तुम्हारे स्पेशल हो गए हैं। भगवान तुम्हारी बुद्धि को घुमा रहे हैं, ऐसा मत कहो, कोई न कोई मनुष्य कोई न कोई वैष्णव आया होगा। तो परंतु वो लोग समझे नहीं, वो लोग लगे दांत में, कहने लगे तुम असुरों के इस चंदन वन में बबून कहां से उत्पन्न हो गए, नालायक। सब लोग मांस खा रहे हैं, सब लोग इंटॉक्सिकेशन दे रहे हैं और तुम इधर एक आज सीख कर रहे हो, इस तरह की तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई, छी छी असुर कुल में दाग लगा दिया, एक दिन ही एक घुट भी शराब नहीं पिया, कितना नालायक, और ऊपर से विष्णु की भक्ति की बात करते हैं। फिर कुछ भी कहते रहे प्रहलाद महाराज नहीं माने, फिर ये लोग पढ़ाए। तो अब साल भर के बाद हिरण्यकश्यप के पास वो लोग लेकर के आए। तो वो लोग जो कुछ कहते थे प्रहलाद महाराज याद कर लेते थे, जो याद हो गया हाँ याद हो गया, सुनाओ सुना देते थे, लेकिन मन से कभी अच्छा नहीं मानते थे, सुना देते थे तो वो लोग समझे कि हाँ अब ठीक हो गया, इस बार तो हम लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। तो ले गए बड़े खुशी के साथ प्रहलाद महाराज को, पहले अंतःपुर में भेजा गया कयाधु के पास, प्रहलाद की माता के पास। तो उसने प्रहलाद को स्नान कराया, खिलाया पिलाया, सजा करके अपने पिता के पास भेज दिया। तो हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ, गोद में प्रहलाद को लिया, उसके शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में आंसू गिरने लगा स्नेह के कारण। और उसने पूछा कि बेटा अब तक जो तुम गुरुजनों से पढ़े हो उसमें से उत्तम क्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या तुमने क्या पढ़ी, अधिकतम पंचदुत्तम जो उत्तम अध्ययन किए हो, द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, तो क्या तुमने लिया, तुम्हारी दृष्टि में कौन सा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दासिम सख्यमात्म निवेदनम। इसको उन्होंने कहा पिताजी यदि भगवान विष्णु के विषय में सुना जाए, कहा जाए, स्मरण किया जाए, उनकी अर्चना की जाए, वंदना की जाए, उनको अपना मित्र माना जाए, सर्वस्व समर्पण किया जाए, सेवा की जाए, तो मैं उसी को सबसे श्रेष्ठ अध्ययन मानता हूं। और वास्तव में प्रहलाद महाराज ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। हम लोग इस संसार में पढ़ लिख रहे हैं, चारों तरफ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कुछ न कुछ पढ़ाने वाले लोग, ज्ञान देने वाले लोग, लेकिन वास्तव में जब हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उनके विषय सुनते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और इस तरह से जब श्री कृष्ण के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे बंधु हैं, तो इस जीवन में वास्तव में सबसे बेस्ट पढ़ाई यही है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप गुरुपुत्रों पर बहुत क्रोधित हुआ, कहा कि अरे दुष्टों, मैं नहीं जानता हूं कि तुम लोग मुझसे वेतन ले रहे हो और काम विष्णु का कर रहे हो, ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा सुनो, अपने लड़के को कह रहा है प्रहलाद को। मैं पूछा इसको तुम लोग साल भर पढ़ा करके लाए हो और मैं पूछ रहा हूं कि सबसे बेस्ट एजुकेशन क्या है, तो कह रहा है श्रवण कीर्तन विष्णु। मैं वही पढ़ाने के लिए भेजा था, इस बार तुम लोगों को सावधान किया था कोई वैष्णव आ रहा है, तुम लोग लापरवाही कर रहे हो, और तलवार निकाल लिया उन्होंने को मारने के लिए। वो लोग थर थर काटने लगे और कहने लगे मोहम्मद परमात्म पर परमात्म सुत पवन सत्र नैसर्गिकीय मतुरस्य राज कविदास मनाना। हे राजन, हम लोगों ने इसे नहीं पढ़ाया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ये मैं मानता हूं तुम लोग नहीं पढ़ाए हो, लेकिन कोई वैष्णव आकर के पढ़ाया होगा ना, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिए। तो कहते हैं मैं पर लेता हूं, हम 24 घंटा इसी के साथ रहते हैं सरकार, कोई वैष्णव नहीं आया इसके पास कभी भी, मैं पर परमतम दूसरे का सिखाया हुआ नहीं बोल रहा है, सुतो बदती तवेंद्र सत्र, ये आपका जो बेटा बोल रहा है कि हमने नहीं पढ़ाया, दूसरे ने नहीं पढ़ाया, नैसर्गिकीय मतुरस्य राजन, इसकी स्वाभाविक बुद्धि है, अपने आप विष्णु के प्रति तो इसकी भक्ति उत्पन्न हो रही है, हम क्या करें, जन्म से ही लगता है इसकी यही मति है, कोई नहीं पढ़ाया है, कोई नहीं सिखाया है, कभी भक्त योजना में इसको हम लोग भेजे नहीं, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं, तो अपने आप हो गया, हम क्या करें, आप क्रोध रोकिए नहीं तो हमारा हार्ट अटैक कर जाएगा सरकार, हम लोग गरीब ब्राह्मण हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप तलवार हाथ से रख दीजिए, नहीं तो हमारी दुर्दशा हो रही है। तो उसको विश्वास हो गया कि ये लोग नहीं पढ़ाए हैं। तो फिर प्रहलाद से पूछा, यदि तुम्हारी ये असती मति गुरुमुख से नहीं हुई है, गुरु के मुख से नहीं हुई है, तो कहां से हुई, बोलो, कौन तुमको सिखाया? तो प्रहलाद महाराज इस पर बहुत खड़े होकर के कहते हैं, मतिर कृष्ण परतः स्वतोर है मिथे विपद्युत गृह बताना। जो लोग तुम्हारे जैसे इंद्रियों के गुलाम हैं और घर गृहस्थी को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान चुके हैं, इंद्रियों के भोगों को जिसको उन्होंने करोड़ों जन्मों में भोगा है उसी को फिर मनुष्य शरीर में भोगना चाहते हैं, पुनस पुनस चर्वित चरबराने, जिसको चबाया कई जन्मों में उसी को फिर चबा रहे हैं, बड़े बड़े राजा इस संसार के भोगे तृप्त नहीं हुए, तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, तुम्हारे जैसे व्यक्ति की मति न तो अपने आप कृष्ण में लगेगी, न दूसरे के सिखाने से लगेगी, और न समूह सिखा पाएगा, मिथ। तो हमारे जो मति कृष्ण में लगी है इसका कारण है महिम शांताग्र जो अभिषेकम, मैंने महान पुरुषों के चरण गज में स्नान किया है। हमारी जैसी बुद्धि बिना भक्तों के चरण गज में स्नान की नहीं मिल सकती है। और इतना सुना तो एक तो पहले से ही क्रोध था और दूसरे ऊपर से उपदेश कि तुम भी भक्ति करो। प्रहलाद महाराज निर्भय प्रेषण कर रहे थे कि तुम कृष्ण का भजन करो, क्यों दोषारोपण कर रहे हो, ये कर रहे हो। इतने सुनते ही वो गोद से प्रहलाद को पटक दिया क्रोध से, अभी गोद नहीं बैठे थे और पक्का फर्श था नारियल का, उस पर ले करके और फेंक दिया ऐसे, और कहा कि किसी भी उपाय से इसको मारो, ले जाओ हमारे आंख के सामने से हटा दो और किसी भी उपाय से इसका वध कर दो। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार आपका बेटा है, पुत्र है, इसको मारना ठीक नहीं है। उन्होंने कस्बो कहता है, बेटा नहीं है, मेरा शत्रु है। तो उदाहरण देता है, देखो दूसरी जगह पर कोई वस्तु उत्पन्न होती है, जैसे जड़ी बूटी दवा है, अपने शरीर से नहीं उत्पन्न हुआ है, लेकिन अपना जब हित करता है वो दवा, वो जड़ी बूटी औषधि, तो दूसरे जगह की जन्मी हुई औषधि को हम लोग अपना बना लेते हैं, ले लेते हैं, और जब अपना अंग भी सड़ जाता है, कैंसर हो जाता है, और वह अपने लिए अहित करता है, पीड़ा का कारण हो जाता है, तो अपना हाथ होते हुए भी उसे काट कर फेंक दिया जाता है, शेषम सुखम जीवति, जिससे कि अन्य अंग जीवित रहे। देखा जाता है ना, अपना पैर किसी का कटा हुआ है, लकड़ी का या प्लास्टिक का पैर लगा करके चल रहा है, तो लकड़ी या प्लास्टिक तो उसके देह से उत्पन्न हुआ नहीं था, वो तो दूसरी जगह उत्पन्न हुआ था। तो हमने कस्बे के कारण का आशय था कि मेरा पुत्र या मेरा बंधु वो है जो मेरे साथ चल रहा है, ये हमारा जन्मा हुआ पुत्र होकर के ही मेरा दुश्मन है, इसलिए इसको मारो, तुम लोग हमारे मित्र हो, ये तुम लोग हमारे पुत्र हो और मित्र हो, ये नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है और शरीर को ही खा जाती है। कहने के लिए कोई कहता है, नहीं हमारा थोड़ा है, रहने दो, हमारे देह में उत्पन्न हुआ है, आत्मज है। कोई कहता है इस तरह की बात। हमें कस्पी भी बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का ज्ञाता था, वो जानता शरीर में ही तो घाव उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है, लेकिन उसको हम चीर करके मवाद अलग कर देते हैं, जबकि हमारे शरीर में पैदा हुआ है, और बाहर की चीज ला करके हम शरीर में फिट करते हैं, लगाते हैं, ये कपड़ा पहने हैं, हमारे शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन ये बेचारा साथ दे रहा है हमारा, इसलिए हमारा है। और जब शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है तो उसको खत्म किया जाता है। तो इस तरह से यह मेरी पत्नी से उत्पन्न हुआ है, मेरा पुत्र है, लेकिन वास्तव में यह एक व्याधि है, महाव्याधि है, इसको समाप्त करो। तो लोग ले गए समझाने लगे, डांटने लगे, नहीं प्रहलाद महाराज माने, तो इनको मारने का बहुत बहुत प्रयास किया। तो कथा इस प्रकार की है कि किसी भी उपाय से प्रहलाद महाराज की मृत्यु नहीं हुई, पर हिरण्यकश्यपु बहुत चिंतित हुआ कि ये मर क्यों नहीं रहा है, अब क्या करें, ये 5 वर्ष का बच्चा और किसी भी उपाय से मर ही नहीं रहा है। तो हिरण्यकश्यपु को शंका है कि हो न हो इसके विरोध से मेरी मृत्यु हो सकती है, आखिर ये जीवित रहेगा तो मैं जो भी उपाय किया हो इसको मारने का, तो इस सहना होने पर सब इसको याद आएगा और बदला लेगा। तो या तो ये भूल जाए मैं जो कुछ भी किया है या मर जाए, दोनों में एक होना चाहिए। तो अब तो मर तो रहा नहीं है, हार गया किसी भी उपाय से, मर नहीं रहे थे प्रहलाद महाराज, वो चिंता करने लगा, कई दिन खाया नहीं सोया नहीं। तब ब्राह्मणों ने गुरुपुत्रों ने कहा कि राजा जी और मंत्रियों ने भी कहा छोटी सी बात के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं, ठीक नहीं। अरे अभी बच्चा है ना, बच्चा है तो हरे कृष्ण कर रहा है, जरा सहना होने दीजिए, तब किसी लड़के में आसक्त हो जाएगा और अपने आप छोड़ देगा। अभी आप क्यों चिंता करते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के विचार भी बदल जाते हैं महाराज, और बच्चे में गुरुदेश अब क्या देख रहा है, बच्चा कल सयाना होगा और मान लीजिए अगर अपने आप इसकी मति नहीं बदलेगी तो हमारे पिताजी आ रहे हैं, शुक्राचार्य जी आने वाले हैं, बहुत बड़े नीति के ज्ञाता है, वो इसको ब्रेन वॉश कर देंगे, वो इसको ठीक कर देंगे, समझा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, एकदम मत चिंता कीजिए, खाइए पिए पीजिए शासन कीजिए, इतना बड़ा राजा होकर इस छोटे लड़के के लिए आप इतने बेचैन हो गए। तो उसने कहा कि ये तो मरेगा नहीं, मैं विश्वास कर लिया, लेकिन ले जाओ तब स्कूल में इसका ब्रेन वॉश करो, फिर जाओ ले जाओ किसी भी तरह से इसका दिमाग बदलो। उन्हें ले गए, पूरा विश्वास था कि स्कूल में ये लोग अब उसके कचित बदल देंगे, कृष्ण भक्ति छुड़ा देंगे। लेकिन एक दिन की बात थी, गृह कार्य में व्यग्र थे गुरु लोग, लड़के सब ऐसे खेल रहे थे, प्रहलाद महाराज सभी लड़कों को बुलाए। तो प्रहलाद महाराज चूंकि एक तो सम्राट के पुत्र थे और दूसरे बहुत प्रभावशाली थे, तेजस्वी थे, तो उन बच्चों को उन्होंने बुलाया, मीटिंग किया, कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, आओ सुनो, खेल कूद तो करना ही है, खेल छोड़ दे। तो सभी लड़के खेल कूद छोड़ दिए और आकर इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने प्रवचन किया जो 2 अध्याय में भागवत में दिया गया है, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मानि भागवतानि हैं दुर्लभं मानुसंजनं तदप्य अधर्मार्थकम्। बच्चों को इस तरह से सिखाया प्रहलाद महाराज ने, तो उसका क्या परिणाम हुआ, मैं यहां से संस्कृत पढ़ करके कथा सुना रहा हूं। अथ दैत्य सुतः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहे निर्वद्यत्वाद् नैव गुर्वं शिक्षितम्। अथ दैत्य सुतः सर्वे, उस असुर विश्वविद्यालय में उस दैत्य के स्कूल में जितने भी बच्चे थे असुर के, अथ दैत्य सुतः दैत्यों के बच्चे थे, और उनमें से जितने भी बच्चे थे सब प्रहलाद महाराज की बात सुने और प्रहलाद महाराज की बात को स्वीकार कर लिए। क्यों? निर्वद्यत्वात्, क्योंकि प्रहलाद का जो उपदेश था वो निर्दोष था, वास्तव में हित करने वाला था, वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात बता रहे थे, इसलिए बच्चे तो अभी पॉल्यूटेड नहीं थे, संसारिक विचारों का आवेश उनपर अभी नहीं हुआ था, इसलिए वे बहुत जल्दी स्वीकार कर लिए। और नैव गुरु अनशिक्षितम्, और गुरु लोग जो सिखाते थे संसारिक बात, धर्म अर्थ काम की, पैसा कमा करके ऐसे भोगना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जैसे आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसको नहीं ही स्वीकार किया, नहीं ही स्वीकार किया कोई भी लड़का। इसका अर्थ यह है कि दूसरे दिन जब क्लास लगा, अलग अलग टीचर जब पढ़ाना चालू किए, तो लड़के बेंच पीट पीट कर कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भाई एक दो बच्चा अगर इस तरह से कर पाते उसको डांटते पीटते, अब सारे लड़के हरे कृष्ण कर रहे थे। प्रहलाद की बातों में आ गए, अथ दैत्य सुता सर्व श्रुत्वा तद अनुवर्णितम जग्रहीन निर्वध्यत्व नैव गुरु अनुशिक्षित। गुरु लोग चाहे कितना भी डांटे सिखाए हम लोग, वो लोग कहते थे हम राजा के पास पकड़ कर ले जाएंगे, सबको पेटा जाएगा, अगर कोई भी इस तरह से विष्णु का नाम बोला तो सबको पकड़ कर ले जाएंगे। तुमको पता नहीं है कि धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसमें तुम भगवान का नाम ले रहे हो। और इस तरह से लोग डांट रहे थे लेकिन सर्वे अध्ययन जिसमें शब्द दिया गया दैत्य सुता सर्वे सर्वे दैत्य सुता प्रहलाद की बात स्वीकार कर ली। तो अब तक तो प्रहलाद अकेले भक्ति करते थे तो हृदय कस्पु को इतनी चिंता थी और पूरा स्कूल ही चौपट हो गया तब इसको कितना दुख हुआ होगा। तो वे आचार्य लोग गुरु लोग जब देखे कि बच्चे सब एक मति हो गए, अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिं एकान्त संस्थितम्। आचार्य सुत मतलब शुक्राचार्य के पुत्र ने गुरु ने देखा क्या कि सबकी मति तेषां बुद्धि एकांत संस्थितम्, एक में सबकी बुद्धि स्थित हो गई। प्रहलाद जो कह रहा है बस उसी को करने के लिए लोग तैयार, और दूसरा विचार रहा ही नहीं। एक अंत संस्थितम, एक अंत मतलब एकस्मिन कृष्ण स्थितम, सबकी मति केवल भगवान में रह गई और प्रहलाद महाराज को गुरु माने। जब गुरु की लोग कितना भी कहते रह गए उनकी बात नहीं माने, प्रहलाद की बात मानते थे, भजन करना चालू कर दिए। बच्चे थे ही कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मन भगवता ने बात हृदय में धस गई, दो अध्याय में खूब अच्छी तरह से सिखाया है उन्हें। पहले भजन करने लगे और मांस मदिरा छोड़ दिए, जो भी नियम है एक शुद्ध व्यक्ति के उसका पालन करने लगे, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगे, हमेशा नाम जप करते थे, कहते थे कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, हमारे बंधु हैं, ये हैं वो हैं। तो वे आचार्य सुत मतलब शुक्राचार्य के पुत्र वे डर गए और इसकी सूचना तत्काल राजा के पास भेज ले गए थे सुधारने के लिए। ब्रेन वास्ट करने के लिए ले गए थे, दिमाग धो देंगे पहला, नया दिमाग फिट करेंगे। तब तक प्रहलाद महाराज ही सबका ब्रेन वास्ट कर, सभी लड़के वैसे हैं। तब तो वास्तव में इस स्थिति में टीचर का यही कर्तव्य था कि जितना जल्दी राजा को सूचना दे दे, नहीं तो राजा क्रोध करके और पहले तो टीचर का वध करेगा, इसमें संदेह नहीं था। इस बार अगर वे लोग नहीं जाकर कहे होते स्वयं तो आते ही पहले उनका मस्तक तलवार से उड़ा देता, इसके बाद पूछता कि ये क्या हुआ। वो इतना विकट दायित्व था वास्तव। तो लोग जाकर के राजा से कहे कि महाराज वो तो स्कूल के सभी लड़कों को कृष्ण भक्त बना दिया, पता नहीं उसमें क्या शक्ति है, सभी उसके फॉलोअर हो गए, हम क्या करें, हमारी मति काम नहीं कर रही है। राज्य आवे देव जथा त्वरित, बहुत जल्दी गए, त्वरित तुरंत गए, राजा से जो भी घटना थी जैसे प्रहलाद ने प्रवचन किया था जैसे जैसे लोग बता दिए कि सरकार हम लोग थोड़ा सा काम में फंस गए, सबको इकट्ठा किया और वहीं पर लेक्चर देने लगा, एक घंटा के लेक्चर हमने आधा घंटा के लेक्चर में सबको चौपट कर दिया। ये स्थिति है, हम क्या करें, इतना सुन करके बहुत क्रोध किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रुत्वा तद प्रियम दैत्य दुस्सहम तनया में, अपने तनय का यह अनय मतलब अन्याय सुनकर हिरण्यकश्यप इसको सह नहीं सका। कोपावेश चलत गात्र, कोप का आवेश हो गया। आवेश का अर्थ होता है प्रवेश। जब नख से सिख तक सब जगह क्रोध छा जाए तो इसको कोपावेश कहते हैं, क्रोधावेश। इतना क्रोध का उन्मेष हुआ उसके शरीर में कि चलत गात्र, उसका शरीर कांपने लगा क्रोध से, ओठ फड़कने लगा, हाथ कांपने लगा, पैर कांपने लगा। इस सबका अनुभव है कि जब क्रोध है शरीर में डोमिनेट करता है तो शरीर कांपने लगता है ना। पहले क्रोध मन में आता है और मन में आने के बाद वह आंखों पर आता है, आता है लात में आ जाता है, सब जगह क्रोध क्रोध, मनुष्य कांपने लगता है। तो उतना बड़ा बलवान व्यक्ति अपने पुत्र के इस अन्याय को, दुर्नीति को, अत्याचार को सुन करके क्रोध से आग बबूला हो गया। तब पुत्रम हम तो मनोबधे, अब तक हिरण्यकश्यपु यही सोचता था कि अपने हाथ से अपने बेटा को नहीं मारूंगा, दूसरे से मरवा दूंगा। लेकिन आज इसके मन में हो गया कि बस 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 इसको अपने हाथ से मारना है। तो पुत्रम हम तुम मनोबधे, और मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि पुत्र है चाहे कुछ भी है इसका वध करना है, और तुरंत उसको बुलाया, जल्दी से जल्दी पकड़ करके लाए उसको। वे गुरु लोग गए एक आध पुलिस लेकर के, और वो लोग प्रहलाद को पकड़ करके लाए, पकड़ करके लाए। राजभवन में था, सभा में प्रहलाद महाराज तो प्रणाम किए, लेकिन वह क्रोध से बिल्कुल पागल हो रहा था। सबसे पहले उसने इन सिपाहियों को आज्ञा दिया कि इसको बांधो और इसी खंभे में बांध। तो प्रहलाद को ऐसे बांधा गया, पीछे हाथ करके खंभे में बांधा गया, और इसके बाद वो तलवार लिया हाथ में डायरेक्ट मस्तक काटने के लिए। लेकिन क्रोध में मनुष्य कुछ पहले बोलता है तो हिरण्यकश्यपु पहले बोलना चालू किया। जब प्रहलाद महाराज को पहले गाली देना चालू किया, छिप्रा परुसया वाचा प्रहलाद मत बारहणम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज तिरस्कार के या गाली देने के योग्य नहीं थे, अत बरहणम, लेकिन फिर भी वो बहुत कठोर वचन बोला, बहुत प्रकार की गाली दिया। एक क्रोध में जब व्यक्ति हो जाता है तो क्या बोल रहा है कुछ ध्यान नहीं रहता, बहुत बहुत गाली दिया। उस गाली को यहां सुखदेव गोस्वामी बोल नहीं रहे हैं क्या क्या कहा, खूब कठोर वचन बोला। और प्रहलाद महाराज को देख रहा था, आह इक्षमाण पापे न तिरश्चिन न चक्षुषा, प्रहलाद को सीधा नहीं देख रहा था, तिरछा से देख रहा था, तिरश्चिन चक्षुषा और पापे न पापी नजर से देख रहा था। पाप का अर्थ जान मारने की सोच रहा था कि आज इसको समाप्त करके रहना, इसको पाप दृष्टि कहते हैं। इतने बड़े महान भागवत पुरुष को प्रहलाद महाराज को खत्म करना चाहता था, यह है आसुरी विचार। जबकि प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिनको जीना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो कुछ भी है वो उस भाव का प्रचार करना चाहता है। तो प्रहलाद महाराज में कृष्ण भक्ति है, वे चाहते हैं कि जगत के सभी लोग कृष्ण के भक्त बने, उनका जीवन सुखी हो। लेकिन दूसरे तरफ सत्ता में बहुत बड़ी शक्ति है, आसुरी शक्ति, जो इसका विरोध कर रहा है। हिरण्यकश्यपु ये ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं बहने देंगे कृष्ण भक्त, प्रचार नहीं होने देंगे। तो आज मूल प्रचारक को ही, फाउंडर आचार्य को ही मारने जा रहा है। ये हिरण्यकश्यपु का विचार है। तो देख रहा है प्रहलाद महाराज को किस तरह से तिरछी तिरछे नेत्र से, टेढ़ी नजर से और पाप नजर से, पाप की दृष्टि से। इस प्रकार से वास्तव में मनुष्य संसार में जो कुछ भी व्यवहार करता है उसमें देखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार है। हम किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखने के लिए तो सवेरे से शाम तक
सब लोग पता नहीं कितने हजारों हजार लोगों को देखते रहते हैं, लेकिन हजारों लोगों को देखने में दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर आगे आगे ड्राइविंग कर रहा है, पीछे वाला साइड मांग रहा है, और साइड देने में अगर वो देरी कर देता है आगे वाला ड्राइवर, तो ये ड्राइवर जब साइड पाता है तो उसके सामने जब आता है तो कुछ ऐसे देखता है। अब तो करे क्या, हो तो अपनी गाड़ी में आबद्ध है, लेकिन लगता है उसे खा जाएगा, है ना, तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक दृष्टि बदल देता है इस तरह से कई बार हम लोगों ने देखा, बिना मतलब के लोग गुस्सा में हो जाते, बिना मतलब के ऐसे क्रोध करते, और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कम से कम दृष्टि का बाण चला करके चल देते, कुछ समझ जाए कम से कम ड्राइवर की ये क्रोध में है तो क्रोध में हो गए, कुछ किए नहीं तो बिगाड़े तो अपना क्रोध आग है, आदमी जलता रहता जलता रहता। किसको किस दृष्टि से देखना चाहिए, शास्त्र बताता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सबको अपनी मां के समान देखना, कम से कम दूसरे की जो विवाहिता पत्नियां हैं उनको अपनी मां के समान देखना, और जो छोटी बच्चियां हैं उनको अपनी पुत्री के समान देखना। इस तरह से जो देखता है मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे का धन कहीं रखा हुआ है या पड़ा है रास्ते में या कहीं जैसे तैसे, उसको लोष्ठवत मिट्टी के ढेले के समान जो देखता है, और आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति, और दूसरे जीवों को जो अपने ही समान देखता है, जैसे हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, तो इसी तरह से जब जिसको देखें जिसके बारे में विचार करें तो सोचो वो भी मैं ही हूं, इस रूप में वह सुखी रहे, वह स्वस्थ रहे, सफल हो, किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, किसी के प्रति मत्सरता न हो कि हमसे आगे बढ़ रहा है, ये हो रहा है, ये वास्तविक दृष्टि है। यहां सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु पाप दृष्टि से देख रहा था, जो पहले स्नेह दृष्टि से देखता था पाप दृष्टि से देखता है। दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन शास्त्र द्वारा लोक द्वारा सुना है कि मछलियां अपने अंडे को दृष्टि से पोसती, वो अंडे पर देखती रहती हैं, इसलिए बच्चा वो अंडा तैयार होता रहता है, दृष्टि में शक्ति, देखने में नहीं है लेकिन देखो मगर प्यार से ये ट्रक वाले भी बेचारे ये अपेक्षा करते हैं, देखो देखने मना नहीं कर रहे लेकिन प्यार से देखो, प्रेम भरी दृष्टि से देखो। जैसे हम अपने पुत्र को अपनी पत्नी को देखते हैं, यह प्यार का मतलब कहने का मतलब स्नेह है, स्नेह भरी दृष्टि से, तो हिरण्यकश्यपु की दृष्टि में पाप भरा था, इस लड़के का वध करना इस तरह से देख रहा था। और प्रहलाद महाराज कैसे थे, वहीं उसके सामने प्रस्रव अवनतम, प्रस्रव कहते हैं विनय को, विनय से वे झुके हुए थे अपने पिता के सामने, प्रहलाद महाराज प्रणाम करके और झुके हुए थे, और वह क्रोध से कांप रहा था। प्रहलाद के सामने तो बहुत बड़ा शरीर वाला असुर था, प्रहलाद बिल्कुल छोटे थे और हाथ जोड़कर खड़े थे, बद्धांजलि बद्ध अंजलि अंजलि बांधे थे दांतम, और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखे थे, अगर वह गाली दे रहा था तो ये गाली नहीं दे रहे थे, इसको दांत कहते, वाणी पर कंट्रोल था, हाथ पर कंट्रोल था, ऐसा नहीं कि अभी उधर से वो बोल रहा था इधर भी ये भी गाली देने चालू करें, तुम डीमन हो, ये हो, वो हो, ऐसे हो। पुत्र का जो धर्म है वो पुत्रों को निभाना चाहिए हमेशा, हिरण्यकश्यप जैसे पिता के सामने प्रहलाद महाराज बिल्कुल नम्र। आजकल बच्चों में बहुत बड़ा दोष पाया जाता है कि ये लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं और कुछ भक्ति करने लगते हैं तो कहते हैं हमारा पिता तो राक्षस है और पिता के रोज कमाई खा रहे, पिता राक्षस हो गए। कई बार हमसे कुछ लोगों ने पूछा है कि महाराज मान लीजिए पिता हिरण्यकश्यप हो जाए तब। मैं कहा अरे भाई तुम्हारा बाप हिरण्यकश्यप हो ही नहीं सकता है। हिरण्यकश्यप होना बस एक ही व्यक्ति के भाग्य में था, वो बहुत दुर्लभ पद है। हिरण्यकश्यप हो जाने का मतलब है कि अब भगवान ही मार सकते हैं, उसे दूसरा कोई नहीं मार सकता, और तुम प्रहलाद नहीं हो गए हो। दोनों ओर से देखो, लेकिन बस तुरंत पिताजी को हिरण्यकश्यप बना देना है तो बाएं हाथ का खेल। वैसे है वैसे है, बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। प्रहलाद महाराज का आचरण में बोल रहा हूं, ये हाथ जोड़ करके खड़े है नम्र भाव से, सर्प पदा हतो और अवस्थितम, कितना भी क्रोध कर रहा था, मारने के लिए दौड़ रहा था, हाथ में तलवार लिया था, लेकिन प्रहलाद महाराज अवस्थितम निर्भय खड़े थे, परंतु नम्र भाव से खड़े थे। ऐसा भी नहीं कहे कि चलो मारो जो कुछ करना हो करो, ऐसा भी नहीं कहो, बोले ही नहीं, चुपचाप खड़े थे। फिर भी हिरण्यकश्यप उस तरह से क्रोधित हो गया प्रहलाद के न बोलने से, जैसे लगता था कि कोई व्यक्ति विषधर सर्प को पैर से मार दिया हो और वह पैर फुफकार, वह सर्प फुफकार मार रहा। कहीं सर्प में तो स्वाभाविक ही क्रोध होता है, श्वसन प्रकृति दारुण, वैसे ही हिरण्यकश्यप तो स्वभाव से ही दारुण था, भयावह था, और ऊपर से जब उसके पुत्र ने इस तरह का अन्याय किया तो उसका क्रोध और बढ़ गया। जैसे सर्प स्वभाव से भयानक होता है, स्वभाव से ही फुफकार छोड़ता है, लेकिन उसको कोई पैर से मार दे तो और फुफकार छोड़ेगा और डसने की चेष्टा करेगा। इस तरह से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए पहले डांटा, हे दुर्विनीत। प्रहलाद को सबसे पहले कह रहा दुर्विनीत, जबकि प्रहलाद महाराज विनीत हैं, विनीत का अर्थ नम्र, और वो कह रहा है अरे उदंड, अरे अनम्र स्तब्ध, इस तरह का संबोधन दे रहा, अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन, अरे मंद बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि कितनी मंद है, तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम मेरी अगर आज्ञा पालन करोगे तो मेरे बाद तुम राजा बनोगे, कितना हैप्पी लाइफ तुम्हारा होगा, कितना सुखी रहोगे, लेकिन हाय हाय तुम्हारा भाग्य फूटा हुआ था, तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ था कि बाप के हाथ से ही मरेगा, हाय हाय ऐसा इतिहास में मैं कहीं नहीं सुना, तो पूर्व जन्म में तुम्हारा और इस जन्म में भी इतना बैड कर्म रहा है कि अपने बाप के हाथ से तुम्हें मरना पड़ेगा, क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे बुरे कर्म वाले लोग इस जगत में जन्म लेते हैं। कई पिता किसी को मार कि पिता किसी पुत्र का वध करता है, लेकिन ये ऐसा दुष्ट है कि आज इसका वध मेरे हाथों से होगा, तो ऐसे बोल रहा है। कुल भेद कर, अरे कुल में भेद पैदा करने वाला, सभी कुल के लोग, हमारे कुल के जितने लोग हुए सब कितने बड़े बड़े राजा हुए, शान के साथ भोगे, और तुम भिखमंगा का पथ अपना रहे हो। हमारे कुल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो विष्णु से लोहा न लिया हो और विष्णु से नारा न गया हो, ये नहीं कह रहा है। हमारे खानदान की रीति रही है कि हम लोग विष्णु के विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी, और हम लोग शान के साथ पूरी दुनिया के राजा रहते हैं, स्वर्ग को अपने कब्जे में रखते, लेकिन तुम कुल की रीति बिगाड़ दिया, तुम अभी इन बच्चों को सिखा रहा हो हरे कृष्ण अरे इनको कमाना सिखाना चाहिए, इनको कुछ टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनी चाहिए, बेचारे भविष्य में कैसे जिएंगे, कैसे कमाएंगे, आगे चलकर विवाह करेंगे तो कैसे मेंटेन करेंगे परिवार को, नालायक तुमने सारा चौपट कर दिया, तुम इस तरह से सिखा रहे हो। यह कुल भेद कर, कुल में भेद कर देना, कुल किस रास्ते पर चल रहा था तो तुम कौन सा रास्ता पकड़ लिए। कभी कभी लोक में भी लोग ऐसा कहते हैं, हमारे खानदान में कोई हरे कृष्ण पहले नहीं कहता था, नहीं कहता था तो तुम्हारा लड़का कुल भेद कर हो गया, अब कुल में भेद पैदा कर दिया, अब भगवान का भक्त हो गया। कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम कहते हैं तो हमेशा विपरीत रास्ते पर चल रहे थे, तो इसका मतलब कि अभी भी उसी पर चलेंगे, उल्टा रास्ता पकड़ कर जा रहे थे तो अब तो सही रास्ता पकड़ना चाहिए ना। कितनी सुंदर यह संस्था है और कितना सुंदर उपदेश है वास्तव में। सारे जगत में पहला प्रभाव आप देखिए, आहार शुद्ध होता है और आहार शुद्ध होने से ही सब शुद्धि होती है। कोई संसार में ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है इस्कान के समान जो लोगों को इस तरह से शुद्ध शाकाहार और उस पर भी महाप्रसाद खाने की शिक्षा दे रहा है। कितने कितने लोगों का आहार सुधर गया और वे आज बहुत सुखी हैं। और भी नियम आप सभी जानते, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप जैसा महान राजा यह कह रहा है कि तुम हमारे कुल की रीति उल्टी कर दिए, बिगाड़ दिए। कोई विष्णु का भक्त नहीं हुआ था लेकिन तुम ऐसे बिगाड़, और उस पर भी अकेले भी ये भक्त, अकेले भी तुम भक्ति करते तब भी मुझे कम चिंता थी, अब तो तुमने सबको चौपट कर दिया। कुल भेद कर, बहुत सुंदर शब्द बोल रहा है। प्राय लोग चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुल के नियमों का पालन करे। हम एक बार रथ यात्रा के लिए चंदा मांगने गए थे अपने गांव में, जब थे एक जगह एक व्यक्ति ने कहा कि आप जाइए उस व्यक्ति से मांगिए, वो बहुत धनी व्यक्ति है। तो हम लोग गए तीन चार आदमी, वो शराब बेचता था, उसके शराब की भट्टी थी, हम तो पहले नहीं जानते थे। तो गए तो हम पूछ दिए कि अच्छा आप इतने धनी हैं तो दूसरा धंधा भी कर सकते हैं, तो आप शराब क्यों बेचते हैं। तो उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, वो कहा कि महाराज हमारे खानदान में यही बेचते लोग आए हैं, इसीलिए मैं बेचता हूं, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, मुझे बहुत प्रिय है। वो कहा जबकि पीता नहीं है, एक घूंट भी नहीं पीता है, होली पर भी दिवाली पर भी लेकिन वो खानदान, वो कह रहा था खानदान हमारा बेचा है इसलिए हमें बेच रहे हैं। खानदान के प्रति बहुत बड़ी ममता होती है, लेकिन पहले देखना चाहिए कि खानदान कैसा रहा है। हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप का खानदान रहा है कि किसी देवता का खानदान रहा है। खानदान को नवजीवन देने की आवश्यकता है, वास्तव बदलने की आवश्यकता है। और पूरा वंश खानदान यदि मछली खाता हुआ आता है तो क्या हम ही मछली खाएंगे। वो कोई कहता हम तो बंगाली हैं इसलिए हम तो खाते आए, हमारे माता पिता खाते आए हैं, लेकिन क्या हमारे संस्था में बंगाल के भक्त नहीं है। बंगाल के ही व्यक्ति ने इस स्थान की स्थापना किया, सारे जगत में लोगों को शाकाहारी बनाया। लेकिन कोई ऐसा कह सकता नहीं हमारे लिए जरूरी है ये है वो है, कुछ जरूरी नहीं। तो जब भगवत भक्ति का प्रचार होता है तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे संस्था से विरुद्ध है, ये हमारे खानदान से विरुद्ध है, कुछ लोग कहते हैं ये हमारे स्वभाव से विरुद्ध है। आज ही मैं सुना, एक घर गया था तो पता लगा कि एक लड़का भाग गया घर से, इसलिए कि उसका कहना है कि जब देखते हैं तब ये लोग किसी न किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं घर के लोग, आज यहाँ कीर्तन का प्रोग्राम है तो संडे का प्रोग्राम है तो ये हरे कृष्णा वो हरे कृष्णा हमको ही पसंद नहीं, तो बॉम्बे छोड़कर अपने गांव पर चला गया। उद्विग्न हो गया घर के लोगों से, घर के लोग सब कृष्ण के भक्त हो गए तो मेल नहीं। इस तरह से हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को कह रहा है तुम कुल भेद कर हो अधम, तुम अधम। प्रहलाद से बड़ा कौन होगा, लेकिन उनको अधम कह रहा है, स्तब्धम, और तुम अनम्र हो, झुकने वाले नहीं हो, मेरे शासन की अवहेलना कर रहे हो। निश्चय तद जमक क्षय, आज मैं तुमको जमराज के क्षय में भेज करके रहूंगा। क्षय का अर्थ होता है घर निवास, जमराज जी जहां रहते हैं वहां भेज करके रहूंगा। तो जमराज के पास आदमी मर कर जाता है, जीवित नहीं जाता है, इसका मतलब है कि आज तुमको मार दूंगा, आज जमराज के घर भेज दूंगा। ये इतना कहने के बाद भी प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे पापा माफ करो अब नहीं हरे कृष्ण कहूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे थे, फिर भी वे चुपचाप खड़े थे। तो फिर कहता है क्रोधस्य जस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहस्वरा, अरे मूर्ख जब मैं क्रोधित हो जाता हूं तो मेरे क्रोध करने पर तीनों लोक के जो ईश्वर हैं इंद्रादि वे कांपने लगते हैं, भय हो जाता है कि हाय हाय अब हिरण्यकश्यपु क्या करेंगे। मैं क्रोध करता हूं तो वे लोग कांपते हैं, और मैं पूरा क्रोध में हूं फिर भी तुम इतना निर्भय क्यों हो, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। अरे अब भी ये साला भागता कहीं तो मुझे संतोष होता कि चलो डर रहा है। इस तरह से वो कह रहा है, चाहे वाणी से क्षमा मांगता चाहे भागता चाहे आह करता तो मैं कुछ संतोष करता कि चलो डर रहा है, लेकिन अभी तो वक्त बिल्कुल निर्भय है और खड़ा है, मरने से नहीं डर रहा है, क्या मैं कहूंगा। अपने क्रोध से वो और बिगड़ रहा था है ना कश्यपु। तस्य मैं अभी तेन मुझे शासन क्यों बलोत्तेजा, फिर मैं पूरा पूरा क्रोध में हूं, अब क्रोध करना कुछ भी बाकी नहीं रह गया है मेरे लिए। वो ऐसा समझ रहा है कि इतना क्रोध मैं कभी नहीं किया था, साधारण क्रोध करने पर तो तीनों लोग कांप जाता था, और जब मैं पूरा क्रोध किया हूं मेरा छोटा सा बेटा तनिक डर नहीं रहा है। तो फिर पूछता है किम बलोत्त गया मत शासन, बोलो बोलो किसके बल से तुम मेरे शासन की अवहेलना कर रहे हो, मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। उसको शंका हुई कि हो न हो कहीं से इसके बल की सप्लाई आ रही, कहीं न कहीं से इसका बल आ रहा है, शंका आखिर मर नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, तो भयभीत नहीं है तो कहीं न कहीं से इसका बल आ रहा। तो पूछता है किम बल, तुम्हारा क्या बल है, तुम्हारा बल कहां से आ रहा है, पता नहीं तुम इतना बल कहां से आ गया, क्यों निर्भय हो, क्यों नहीं मर रहे हो। तो पूछता है किसके बल से तुम मेरे शासन की अवहेलना कर रहे हो, बोलो बोलो किसके बल से। बार बार जब कहा तो प्रहलाद महाराज कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवय बलम बलिनां चा परेशा ब्रह्मा दयो यस् परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मा दयोजन वसम प्रणीता। हे महाराज देखिए राजन कह रहे हैं, अभी प्रहलाद महाराज कितना सभ्य है, अपने पिता को राजा कहकर कह रहे हैं, हे राजन न केवल मैं मेरा बल ही नहीं, भवतश्च राजन आपके भीतर भी जो बल है, जिस बल के द्वारा आप सारे जगत को जीत लिए हैं, वह बल भी भगवान विष्णु से आ रहा है। इसका मतलब था कि हमारा बल तो भगवान से आ ही रहा है, आपने जो बल है वो भी भगवान से आ रहा है, परे वरे में स्थिर जंगमाये, और चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो, बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, यहां तक कि ब्रह्मा जी में शिव जी में इंद्र में जो बल है वो सब कृष्ण से आ रहा है, विष्णु से आ रहा है। तो उसी की व्याख्या करें कि वही ईश्वर है, वही समस्त प्राणियों में ओज शक्ति है, सह मनोबल है, समस्त बल के कंट्रोलर हैं, सब कुछ है, और वही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं और शक्तियों द्वारा ही पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो उन्हीं भगवान से मेरा बल आ रहा है। तो इस पर हिरण्यकश्यपु कहा, अरे चुप नालायक, हमारा शत्रु हमको बल भेजेगा तुम्हारे भीतर भले उसका बल आ रहा होगा, हमारे भीतर उसका बल नहीं आ रहा है, हम इसको कैसे माने। वास्तव में यह अज्ञता है। जो भक्त हो जाते हैं वे इस बात को पहचान जाते हैं, कृष्ण पालन कर रहे हैं, जन्माद्यस्य जतः, कृष्ण हमें भोजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, पृथ्वी दिए हैं। लेकिन जो अज्ञ हैं, अभक्त हैं, वे कह सकते हैं कि कृष्ण हमको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से ये अंधता है। वास्तव में प्रहलाद महाराज के समान सत्य बात को रियलाइज करना चाहिए कि हम, हमारा जो ही पालन पोषण हो रहा है भगवान कर रहे हैं, यहां तक कि हमारे आंख में जो पलक उठाने और गिराने की शक्ति है भगवान दे रहे हैं, हाथों में शक्ति दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, मत्ता स्मृति ज्ञान मतो हनमच, शरीर में शक्ति, मन में शक्ति, बुद्धि में शक्ति, सब भगवान दे रहे हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु कहा कि हाँ मैं मानता हूं तुम्हारे भीतर उसका बल भले आ रहा होगा, लेकिन ये पागल जैसा मत प्रलाप करो कि हमारे भी बल का वही कारण है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा दुश्मन है विष्णु। अब इस प्रकार का विचार भगवान के प्रति होना, तो प्रहलाद महाराज इस पर अब कुछ कड़े भाषा में प्रीचिंग करते हैं। कहते हैं, जहिया स्वरम भाव मिनम तमात्मना सनम मनु धत् स्वसंत विद्वेश। सबसे पहले आप अपने इस आसुर भाव को छोड़िए, इस आसुर भाव को छोड़िए कि विष्णु आपके बैरी है। वास्तव में विष्णु ही सबके परम बंधु हैं, वही माँ है, वही पिता है, वही सब कुछ है, वही स्नेह से पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप अगर विष्णु को अपना शत्रु समझ रहे हैं तो ये पिताजी आसुर भाव है। इस आसुर भाव को जही आप त्यागी खत्म कीजिए, तब आप समझेंगे विष्णु को। तो प्रहलाद महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहते हैं, इस आसुर भाव को जही छोड़िए, जहिया सुरम भाव ममतम आत्मा, पहले आप अपना दृष्टिकोण बदलिए कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति। कोई वास्तव में शत्रु नहीं है इस संसार में किसी का, अपनी न जीती हुई इंद्रियों के अलावा और न जीते हुए मन के अलावा कोई किसी का शत्रु नहीं है। विष्णु आपके शत्रु नहीं है, आपका शत्रु है आपका मन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इस प्रकार से लगता है जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हो, चुप करो, चुप रहो, इस तरह की बात मत बोलो कि विष्णु शत्रु है। बिल्कुल उल्टी बात, जैसे कोई अपने खास पिता को कहे कि ये पिता मेरा शत्रु है, इसने मुझे जन्म नहीं दिया, ये मुझे नहीं पिलाया खिलाया, और इस तरह की बात विष्णु के विषय में बोलना हिरण्यकश्यपु जैसा, वास्तव में बहुत घातक बात। तो इसलिए हम भक्तों का एक कर्तव्य बनता है कि वास्तव में प्रहलाद महाराज ने जैसे अपने पिता को उपदेश दिया, सिखाया, यदि वो सीखा नहीं लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज निर्भय सिखाए, इस तरह से सबको चाहिए कि वे विष्णु के स्वभाव का वर्णन करें, बतावे लोगों को, और लोग कृष्ण से प्रेम करें, विष्णु से प्रेम करें। ये तो विष्णु का पता ही नहीं है, पहले तो वो है कि नहीं है यही संदेह लोगों के मन में है, इसीलिए सब निराकारवादी होते जा रहे हैं। कोई शक्ति है, कोई ऐसा है, ये है, वो है, एक अंदाजबाजी करना, ये इसीलिए हो रहा है कि लोगों की बुद्धि कम होते जा रही है संसार में दिन पर दिन। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस आसुर भाव को छोड़ो। सबसे पहले किसी को भक्ति सिखाई जाती है तो आसुर भाव छुड़ाया जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब भक्ति का उपदेश करते थे तो सबसे पहले कहते थे नो मीट ईटिंग, मीट ईटिंग आसुर भाव है, ये चलता रहेगा तो हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये चार चीज बताते थे। तो इसको इन चारों में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसका अंतःकरण दूषित रहेगा, गंदा रहेगा, और ऐसे गंदे दूषित अंतःकरण से, हृदय से भगवान को समझना कठिन है। इसलिए पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी इस आसुर भाव को छोड़िए, और आपका शत्रु आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं जो आपके बस में नहीं। आपके समान पहले भी बहुत से जगत में असुर हुए, बहुत से दस्यु हुए जो सारे संसार को जीत लिए, पूरा विश्व उनके बस में था, लेकिन उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं थी, और सबको कंट्रोल कर लिए पूरी दुनिया को, लेकिन अपनी इंद्रियों को, अपने जिह्वा को, अपने नाक कान को बस में नहीं कर सके। वही हालत आपकी है, और आप उल्टे यह कह रहे हैं कि विष्णु शत्रु है, विष्णु शत्रु है, ये है वो है।